श्रीधर का शुभालय। चार चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी के समाधि के लिए उनको 40 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। किसी के यहाँ समाधि और संलेखना ये दो बातें होती है। संलेखना अर्थात सत लेखना, यानी सत अर्थात समीचीनता पूर्वक, लेखन यानी कष्ट करना, अर्थात देवता भी अन्न आदि के माध्यम से क्रम अनुसार त्याग करना, एक बाह्य संलेखना या दर्द संलेखना कहलाती है, भीतरी आंतरिक संलेखना या भाव संलेखना का कसायों को भी कष्ट करना, राग द्वेष मोह या क्रोध मान माया लोभ आदि ये कसाये हैं, इनका भी कष्ट करना या त्याग करना, और समाधि अर्थात आदि व्याधि और उपाधि से है जो अवस्था होती है वह कहलाती है समाधि। आदि अर्थात मानसिक रोगों से भी रहित और व्याधि अर्थात शारीरिक व्याधियों से भी रहित होना चाहिए। उपाधि अर्थात पद सत्ता लोल उपाधि, इनकी आकांक्षाओं महत्वाकांक्षाओं से भी रहित जिसकी स्थिति होती है वह समाधि कहलाती है। तो यह समाधि क्यों ग्रहण की जाती है, इसके लिए आचार्य शांत भद्र देव जी कहते हैं, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरासीयाम च निपतिकारे धर्माय तनु विमोचन मारू संलेखना मारिया। अला गांधर की धनकर देव आदि कहते हैं उस स्थिति में समाधि या संलेखना ग्रहण की जाती है जब उपसर्गे अर्थात त्रियंशकित या देवकित या अचेतनकित या मनुष्यकित इस तरह का उपसर्ग आ जाए जो नित्य प्रतिकार से रहित है अर्थात जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सके, इस स्थिति में इसको ग्रहण किया जाता है। इसके बाद कहते दुर्भिक्षे अर्थात दुर्भिक्ष यानी दुष्काल, अकाल हो जाने पर जब भिक्षा व्यक्ति की प्राप्ति ना हो तब भी इसके लिए ग्रहण किया जा सकता है। जरा सी अर्थात वृद्धावस्था के होने पर भी इसके लिए ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि वृद्धावस्था में यह शरीर कार्य नहीं करता, अर्थात धर्म या तप संयम आदि का पालन होना चाहिए, इस देह से वह अपना कार्य बंद कर देता है, इस अवसर पर भी इसके लिए ज्ञान किया जा सकता है। और रोजाराम रोग के होने पर वह रोग भी इस तरह का हो जो प्रतिकार से रहे तो अर्थात जिस प्रकार से वह किसी तरह से भी दूर न किया जा सके, इन सभी तरह की स्थितियां उपस्थित होने पर धर्मायतन तनु विमोचन अर्थात धर्म की रक्षा के लिए धर्म अर्थात व्रत संयम तप आदि जो जीवन में ग्रहण किए हैं इनकी पूर्णता के लिए अर्थात इनकी रक्षा के लिए इस देह का त्याग किया जाता है। पूर्ण प्रयास तो यह किया जाता है तो उससे अग्नि को बुझाया जा सके, लेकिन सभी तरह के प्रश्न किए जाते हैं, फिर भी वह अग्नि अगर नहीं बुझती है तो उसमें जितने भी बहुमूल्य सामग्री है धन संपत्ति आदि है उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है और मकान को छोड़ दिया जाता है। इसी तरह से यह देवरी कहलाती है, देव यानी जब तक धर्म का परिपालन हो सके तब तक इसका त्याग नहीं करना, लेकिन इस तरह की उपस्थिति आ गई है तब उसके लिए धर्म व्रत संयम आदि की रक्षा के लिए इसका देह का त्याग किया जाता है, वो भी संकलित रहे अर्थात राग द्वेष या कसायों के अभाव पूर्वक जो समता पूर्वक देह का त्याग किया जाता है वही कहलाता है समाधि या संलेखना। इसके लिए ऐसा भी कहा है जीर्ण शीर्ण वस्त्र के समान, जिस प्रकार से पुराना वस्त्र फट जाता है उसके लिए बदल करके नवीन या नूतन वस्त्र को ग्रहण किया जाता है, इसी तरह से ये देह है, इस देह की आयु पूर्ण हुई होने पर इस देह को बदल दिया जाता है, अर्थात इसमें से आत्मा जो रहती है वह तो अगर मर है वह कभी भी मरण को प्राप्त नहीं होती है, लेकिन वस्त्र के समान इस देह को बदल दिया जाता है। जिस प्रकार से दीपक हुआ करता है उसमें जितना तेल होता है वह दीपक उतना ही जलता है, इसके बाद वह भूल जाता है, इसी तरह से यह देह भी होती है, इसमें जीवन यानी आयु रूपी जितना तेल भरा है उतना ही यह टिक सकेगी चल सकेगी, इसके बाद इसका मरण अनिवार्य है। तो ये मरण जो आचार्य शांति सागर जी ने आज के दिन पूर्ण किया यह सभी के लिए अमोभाग्य का वैसा है, इन्होंने इंगली मरण के लिए प्राप्त हुई अर्थात जिसमें किसी दूसरे के द्वारा इन्होंने सेवा सुशूषा नहीं कराई, अर्थात स्वयं ही अपनी देह की परिचर्या में रख ले, किसी दूसरे के द्वारा वही व्यक्ति का इसमें निषेध हो जाता है। एक कहलाता है प्रायोगमन, जिसमें दोनों तरह की अर्थात स्व और पर दोनों तरह की वैया व्यक्ति कर सकते हैं दूसरे लोग और अपनी देह से, और एक कहलाता है भक्त प्रत्याख्यान, जो के लिए इसका उत्कृष्ट काल होता है 12 वर्ष का। इसमें कम कम से यम नियम आदि के माध्यम से आहार आदि का त्याग किया जाता है। तो आचार्य शांति सागर जी ने इंगिने मरण के लिए प्राप्त हुए। वैसे सामान्यतः तो मरण के 5 भेद कहे जाते हैं, बाल बाल मरण, बाल मरण पंडित मरण, पंडित पंडित मरण। अच्छा जो बाल बाल मरण होता है वह मिथ्या दृष्टि या ज्ञानी का होता है, जो बाल मरण होता है वह सम्यक दृष्टि का होता है, और बाल पंडित मरण ये देश ब्रिटिश हालत का होता है, पंडित मरण माँ ब्रिटिश सकल संजीवनी का होता है, और पंडित पंडित मरण ये होता है तीर्थंकर या केवी। अर्थात सर्वज्ञ जो हो जाते हैं उनका ये पंडित पंडित मरण होता है। तो ये ही एक ऐसा मरण है जिसके बाद बार बार मरण को प्राप्त नहीं होना पड़ता है, इसलिए सभी के लिए इस तरह का मरण प्राप्त हो जिसके लिए बार बार मरण न प्राप्त होना पड़े। समय अगत हो रहा है, इसलिए अंतिम पंक्तियों के साथ में गुरु मूले अति निचित चैत्र सिद्धांत दिशा देखो से मम भवत जन्म जन्मनी सन्न सन समन्वितम मरणम। अर्थात हम सभी का इस तरह का मरण हो जहाँ गुरुओं का समुदाय हो, यदि यानी गुरु के समुदाय गुरु के चरण सानिध्य में ही मेरा मरण हो, जहाँ चैतल धर्मायतन हो वहाँ मेरा मरण हो, नमोकार मंत्रादि यानी शास्त्रों का श्रवण हो उस तरह के स्थान पर मेरा या हम सभी का मरण हो, यही मेरी आचार्य शांति सागर जी के प्रति श्रद्धांजलि। उनके लिए बारम्बार नमस्कार।
चिन्हों पर चलने वाले, उनका ही अनुकरण करने वाले साधक का दीक्षा दिवस है। और दो चीजें और मुझे दिख रही हैं, वो भी मुझे कहने हैं। मैं असमंजस में हूं कि किस क्रम से कहां से शुरू करूं, कौन सी बात कहूं। पहले मैं वहीं से शुरू करता हूं जहां से संलेखना के लिए चरण बढ़ाए जाते हैं। आज का वह दिन मैं मुनि श्री क्षमा सागर जी को तो याद करूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं उस व्यक्तित्व को ही याद करना चाहता हूं जिसने ऐसे महान दिव्यात्मा को सुसंस्कारित किया हो। जो आज आपके बीच जिन्हें आपने मुख्य अतिथि बनाया वे आदरणीय है। मैं आदरणीय इसलिए, वैसे आप कहेंगे महाराज जी आपके आदरणीय, इसलिए कह रहा हूं हमारा भूत प्रज्ञापन नए की अपेक्षा से कथन है। मैं आगम के वाक्य जानता हूं, भूत प्रज्ञापन नए की अपेक्षा मेरा कथन है कि जब मैं बहुत छोटा था तब उनके घर आया जाया करता था, इसलिए मैं उनको आदरणीय कह रहा हूं। वो आदरणीय सिंह जीवेंद्र कुमार जी हैं जिन्होंने एक ऐसे रत्न को सौंप दिया आचार्य श्री के चरणों में, और वह रत्न सामान्य रत्न ही एक महान रत्न बना जो हम क्या आप क्या सभी जानते हैं। सब लोग उनसे धर्म की बात सुनते हैं, सहजता से सरलता से हमें हृदय ग्राह हो जाती है। उनके लिए मैं मात्र दो पंक्तियां कहूं इतनी ही पर्याप्त होंगी। धन वैभव के न भाए इन्हें आलय हैं, धन वैभव के न भाए इन्हें आलय हैं, ज्ञान चारित्र के ये सच्चे हिमालय हैं, मंदिर की मूर्तियां तो मौन रहती हैं, मंदिर की मूर्तियां तो मौन रहती हैं, सचमुच ये चलते फिरते जिनालय हैं, ये चलते फिरते जिनालय। जिनसे हमें सब कुछ मिल रहा हो हमारे लिए तो वही आद्य गुरु होता है। भगवान का बिंब हमसे कुछ कहता नहीं है, हमसे तो गुरु ही हमारा हाथ पकड़ करके हमें अच्छी राह पर चलाने के लिए कहते हैं और गलत रास्ते पर रोकते हैं कि हम मत जाओ। इसलिए गुरु ही हमारा आद्य भगवान होता है। ऐसे ये संत हमारे बीच है। ये कैसे हुए होंगे, ये संत समागम का ही एक फल है। यदि सिंह जी के जीवन में संत समागम नहीं हुआ होता तो शायद इनके परिवार में ऐसा रत्न नहीं होता, इनकी परंपरा में रहा है। आपके पिताश्री और उनके और वे सब धर्म से संस्कारित थे। पूज्य वर्णी जी के सानिध्य में इनका बहुत समय बीता है और उनसे संस्कारित होने की वजह से ऐसा रत्न हमें प्राप्त होगा। ये संत समागम का ही फल है। मैं दूसरी बात और ये संत समागम के फल की बात कहना चाहता हूं कि संत के चरणों में आने के बाद या जहां संतों के चरण पहुंचते हैं वहां कांटों में भी धूल खिल सकते हैं, इसे भूलना मत। मैं गुना के उस महान हस्ती का भी उल्लेख करना चाहता हूं जिसकी आप कविता सुन रहे थे अभी, मंगन लाल की कमल। आप नहीं जानते होंगे संत समागम से क्या परिवर्तन आता है। आप गुना के मुमुक्षु मंडल के अध्यक्ष, आप गुना के मुमुक्षु मंडल के अध्यक्ष, हमारा जब चातुर्मास हुआ तो उसमें आप अध्यक्ष थे और आपके एक साथी एक उपाध्यक्ष थे बाबूलाल प्रकाशन जी, जो शायद अब यहां नहीं है, धरती पर नहीं है। ये दो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति थे मोक्षी मंडल के। बाबूलाल प्रकाशन तो 3 महीने तक हाथ बांधे ऐसे खड़े रहते थे, कभी हाथ नहीं जोड़े होंगे इस व्यक्ति ने। लेकिन जब उन्होंने सुना देखा परखा कि आगम की कसौटी पर वास्तव में साधु तो साधु के जो वचन होते हैं ये सत्य यही है, ऐसे झुके कि संत के चरणों में आ गए, समर्पित हो गए और इतने भक्त बने कि महाराज जी के पास बैठ करके घंटों तत्व चर्चा करते हैं। ये कवि महोदय भी तत्व चर्चा करते हैं घंटों बैठ करके। इनकी बुद्धि में ऐसा परिवर्तन आया, भगवान की कृपा कहिए कि बुद्धि सम्यक हुई। महाराज की सेवा में रहते हैं, आहार दान देते हैं, आते हैं, दर्शन का लाभ लेते हैं, धर्म का उपदेश सुनते हैं। मैं सबको संत समागम का ही फल मानता हूँ। आप भले निमित्त को ना मानते हैं, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि निमित्त कुछ करता है, इसलिए इनके जीवन में परिवर्तन आया। मेरी भावना है कि ऐसे संतों का समागम जहाँ जहाँ जिस जिस जगह होता हो, वहाँ के लोगों में ऐसी ही सम्यक बुद्धि उत्पन्न हो कि वे वस्तु स्वरूप को ठीक ठीक समझें, कसाई को विसर्जित करें और अपनी आत्मा के कल्याण में लगेंगे तो संत समागम का एक फल मिलेगा। दूसरा हमारा बिंदु जो आज का महान पर्व साधना का पर्व है, यह वो क्षण है जिस क्षण के लिए साधक जब से अपना ये जीवन जीना प्रारंभ करता है तब से उसकी दृष्टि में वह एक ही क्षण दिखाई देता है कि कब मेरा समाधि पूर्वक मरण हो। जिसके जीवन में वो समाधि का दिन दिखाई नहीं दे रहा, वो क्षण दिखाई नहीं दे रहा है, वो साधक साधक नहीं माना जाएगा। इस धरती पर जन्म लेने वाला व्यक्ति जन्म लेने के साथ ही मरना प्रारंभ कर देता है। आपको नहीं दिखता हो मरण, लेकिन प्रतिपल मर रहा है। आप तो तभी ऐसा मानते हैं कि जिस दिन वो पूरा मर जाता है तो आप कहते हैं मर गया है, लेकिन यहाँ तो एक शरीर को छोड़कर के यह आत्मा जब नए शरीर के लिए जाना प्रारंभ कर देती है तो कहते हैं उस नए शरीर को ग्रहण करने से पहले तीन समय ये अपने व्यतीत कर देती है। जिंदगी नई जिंदगी के तीन समय आने जाने में ही व्यतीत कर देती है और वहां पहुंच करके जन्म कब होगा उसके पहले कोई कोई नौ नौ माह कोई आठ माह कौन जिनका जितना समय उतना समय गर्भ में कर देते हैं। वो जन्म होते ही साथ फिर एक एक क्षण उनका ऐसा बीत जाता है और आयु पूरी हो जाती है और फिर मर जाता है। मरण क्रम क्रम से होता है, एक साथ नहीं होता। जन्म एक साथ होता है लेकिन मरण क्रम क्रम से होता है। जिसने मरण की परिभाषा समझ ली, जिसकी दृष्टि में वो मरण दिखाई देने लगा, वह साधक परम साधक है। धन्य है उसकी साधना जो साधना के पथ पर उसने सब कुछ छोड़ करके दिगंबर अंगीकार किया एकमात्र अपनी आत्मा की उपलब्धि के लिए। संलेखना की साधना घर में रहने वाले व्यक्तियों से मैं कहना चाहता हूं, ये वो साधना है अंतः क्रियाधिकरणम तपह फल तर्स नस्तौते तस्माद्यावत दुग्धम समाधि मरने प्रियम। ये समूची जीवन की साधना का अंतिम क्रिया कर्म है, उसका एक फल है जिसने अपने जीवन में संलेखना उपलब्ध कर ली, उसने अपने जीवन रूपी शिखर के ऊपर कलश चढ़ा लिया और संलेखना का फल नहीं मिला उसकी साधना बेकार हो जाती। ये साधनाएं परीक्षा की तरह, ये परीक्षा की घड़ी है संलेखना। बालक परीक्षा देते, स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, कर देते हैं परीक्षा, मार्च अप्रैल मई जून में उनकी परीक्षाएं होगा करते हैं, परीक्षा देते हैं, फिर उसके बाद उनका परिणाम घोषित होता है कौन पास होगा कौन फेल होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि परीक्षा कि दिन ही वहां बैठते हैं पहले से कुछ तैयारी करते हैं? वर्ष भर जब से क्लास प्रारंभ होती तब से रेगुलर कंटिन्यू वो क्लास में बैठता है और जो वहां का अध्यापक पढ़ाता है उसे ध्यान से पढ़ता है, बार बार अध्ययन करता है और वर्ष भर के अध्ययन के उपरांत वह परीक्षा में बैठता है और उसका परिणाम प्राप्त करता है। जो वर्ष भर नहीं पढ़ते, जिन्होंने कभी किताब खोल करके नहीं देखी, क्या वह परीक्षा दे पाएगा? दे देने के बाद क्या उसका फल उसे प्राप्त हो पाएगा? कुछ नहीं होगा, खाक प्राप्त करेगा। किताब ही नहीं खोली वो क्या परीक्षा में बैठेगा? इस साधना है जो पहले से साधना करता हो परीक्षा में सफल होता है। संलेखना की साधना भी ऐसी ही साधना है जो साधना के मार्ग पर निकल जाने से क्रम क्रम कठोर से कठोरतम अपने कसायों को उपशमित करने की, कसायों को दूर करने की साधना करता है, वही व्यक्ति संलेखना को प्राप्त होता है, आत्मा को उपलब्ध करता है। आपके यहाँ अभी रक्षाबंधन पर्व आया था और रक्षाबंधन के दूसरे दिन एक त्योहार मनाया जाता है, आपके यहाँ मनाया जाता मुझे मालूम नहीं, जो होता ना लोग भुजरिया क्या बोलते आप लोग, भुजरिया होती है याद आते मुझे, आपको मालूम है कि भुजरिया कैसे उगाई जाती है, घर के किसी अंधेरी कोठरी में, किसी अंधेरे स्थान में मिट्टी के एक बर्तन में मिट्टी डाल करके खाद देकर के उसमें गेहूं डाले जाते, पानी डाले जाते हैं और 8-10 दिन में वो धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हो जाते हैं और 10 दिन में वो अच्छी बड़ी मात्रा में हो जाती है, पीला पीला होता है, ऐसा लगता है जैसे सोने की बनी हुई है, लेकिन जब बाहर लाते हैं तो घंटे दो घंटे के बाद सूर्य के प्रकाश और ताप में उनकी क्या स्थिति होती है, वो मुरझा जाते हैं, सूखने लगते हैं, क्योंकि वे सुकुमार की तरह सुकुमारता में पड़ी हुई है, उन्होंने सूर्य का प्रकाश और प्रताप का दर्शन भी नहीं किया कि कैसा होता है, इसलिए उस प्रकाश और प्रताप में आने पर वो मुरझा जाते हैं। लेकिन किसान जब खेत में बीज बोता है और बीज को देने के बाद 2-4-8 दिन के बाद उसमें से अंकुर होता है, पौधा निकलता है और पौधा धीरे धीरे जब 15 दिन में बड़ा होता है तो उसका रंग कैसा होता है, कैसा होता है, हरा होता है, पीला नहीं होता, हरा होता है, क्यों उसका रंग हरा है और उसका पीला क्यों है, जिसने अपने जन्म से ही अपने को समर्पित करके सूर्य के प्रकाश और प्रताप को सहने की साधना की है उसका जीवन लहलहाता रहता है और उस प्रकाश और प्रताप में भी, हवा और पानी में भी, बरसात में भी वो स्थायी बना रहता है, वो मुरझाता नहीं है, क्योंकि उसने कठिन साधना की है। गंडक के तत्वों पर सुनो मालो, पंखा और कूलर की ठंडी हवा लेने वालों, भरत की ठंडी आइसक्रीम खाने वालों, तुम उस धर्म की बात करते हो जिस धर्म के माध्यम से आत्मा उपलब्ध की जाती है, संलेखना तुम्हारे जीवन में कभी नहीं हो सकता, उसके जीवन में ही संभव है जो साधनों से, जो विपदाओं से, ऊपर और परिसरों से गुजरता है, उसके जीवन में ही
तो सामने छोड़े हुए बैठे थे और दूसरे तरफ तीन घंटे के सामने जिनके भीतर में करुणा आ जाती है अहिंसा के संवर्धन और संरक्षण के लिए अपने पूरी पत्नी को छोड़ सकते हैं वही साधक है। और जब अपने साधना में उतरते हैं आत्मा की साधना में तो भाई को बैठे रहते हैं बड़े सिपाही उत्सर्ग शांति उत्सर्ग चीजों को उत्सर्ग उनके ऊपर आए लेकिन कभी
आज श्री नागर जैसा संत चाहिए।